तफसीर अब 29वां पारा शुरू हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये पारा जो है ये पूरा का पूरा जो है ये मक्की सूरतों पर मुश्तमिल है। बहरहाल बीच में एक आध या एक दो के बारे में ये भी है कि बाज लोगों का ख्याल कि ये मदनी है, लेकिन ज्यादा राय यही है कि सूरत मुल्क से सूरतों का सातवां यानी आखिरी ग्रुप शुरू हो रहा है। और इसमें जो है वो क्या है कि मक्की सूरतें हैं, और बीच में चंद सूरतें हैं जिनके मक्की या मदनी होने के बारे में इख्तलाफ है। तो बहरहाल इंशाल्लाह फिर उसको हम देखेंगे। और सूरत मुल्क मक्की सूरत है, इसके 2 रुकू और 30 आयात हैं। अल्फाज और कलेमात की तादाद 335, हुरूफ 1,359 हैं। सूरत मुल्क का नाम पहले ही फिक्रे तबारक अल्लज़ी बियादिहिल मुल्क के लफ्ज अल मुल्क को इस सूरत का नाम करार दिया गया है। वैसे इस सूरत के चंद एक और नाम भी अहदीस से मिलते हैं, और जैसे तबारुक, अलवाकिया, अलमुंजिया, अलमानिया। और इस सूरत का मौजू और मजमून जो है बहुत मुख्तसर तरीके से इस्लाम की दावत और इस्लाम की तालीमात का तारुफ करवाया गया है। दूसरी तरफ बड़े मौसर अंदाज में जो गफलत में पड़े हुए लोग हैं उन्हें जगाया गया है, और जोरदार अल्फाज हैं। दावत जो है मुख्तसिर है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मकसदे बेशत को जो है वो वाजे करती है और सोए हुए जमीरों को बेदार करती है। सूरत मुल्क की फजीलत में मुतद्दिद रवायात आती हैं, और जिनमें से कहते हैं कि सिर्फ चंद रवायात सही या हसन है, मैं आपके सामने पेश करती हूँ। एक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की किताब में एक सूरत है जिसमें सिर्फ 30 आयात हैं, ये आदमी की सिफारिश करेंगी यहां तक कि इसको बख्श दिया जाएगा। तिरमिजी, अबू दाऊद, इब्ने माजा, मुसनद अहमद की रवायत। दूसरी रवायत में है, कुरान मजीद में एक सूरत है जो अपने पढ़ने वाले की तरफ से लड़ेगी हत्ता के उसे जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। और ये भी मजमा जवायद से ली गई है। फिर तिरमिजी की एक रवायत में ये भी बयान किया गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोने से पहले सूरह अलिफ लाम सजदा और सूरत मुल्क जरूर पढ़ा करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि सोने से पहले इन दो सूरतों की आप तिलावत किया करते थे। कहते हैं हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हों से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक सूरत अलिफ लाम तंजील जो 21वें पारे में है और सूरत तबारक अल्लज़ी बियादिहिल मुल्क पढ़ नहीं लेते थे उस वक्त तक रात को नहीं सोते थे। इसको भी मुसनद अहमद, तिरमिजी, दारमी ने रवायत किया है। फिर इसी तरह जो है वो सूरत मुल्क के बारे में जो है शेखुल बानी ने भी असहिया में एक रवायत नकल की है कि सूरत मुल्क अजाबे कब्र से रोकने वाली है, कि इसका पढ़ने वाला उम्मीद है कि अजाबे कब्र से महफूज रहेगा, बशर्ती के वो अहकाम और फराइज़े इस्लाम का पाबंद हो। और आप में से कितने लोगों को सूरत मुल्क आती है? अच्छा, माशाल्लाह 30वां पारा तो आपका हिफ्ज हो चुका, और जो इसको भी हिफ्ज कर ले तो बड़ी ही खुशकिस्मती की बात है। आइए सूरत मुल्क को हम समझते हैं। आगाज बड़ा ही मौसर है, जोरदार है। तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। तबारक निहायत बुजुर्गो बरतर है। तबारक और तबारुक जो है इसका रूट बारा काफ, और इसके मानी क्या है? ऊंट, ऊंट के सीने के लिए भी आता है, ऊंट का बैठ जाना, ऊंट का बैठ जाना, फिर इसके मानी क्या है? तो ये लफ्ज बरकत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और यहाँ पे तबारुक बरकत से मुबालगे का सीगा है। बरकत में नंबर एक रफत और अजमत पाई जाती है, नंबर दो अफजाइश और फरावानी, जैसे किसी चीज का फलना बढ़ना फूलना, और नंबर तीन दवाम और सबात, जैसे किसी चीज का हमेशगी उसके अंदर हो, और चौथी बात है कि कसरत खैर व हसनात, इसके मफहूम पाए जाते हैं। मानी क्या है कि अल्लाह ताला बेइंतहा बुजुर्ग और अजीम है अपनी जात में और अपनी सफात में, अपने सिवा हर एक से बालातर है। उसके अंदर उसकी सिफात में रफत और अजमत पाई जाती है, और उससे बेहदो हिसाब भलाइयां जो हैं उसका फिजान हो रहा है। उसके कमालात, उसके अजायबात, उसकी बख्शिशें लाजवाल हैं। तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, अल्लज़ी ये कौन है? ये अल्लाह है, ये वो जात है, बियदिहिल मुल्क जिसके हाथ में बादशाहत है। अब आप देखिए कि यहां पर जो है कहा जा रहा है कि उसके हाथ में बादशाही है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात जो है वो, जिस तरह से हम किसी इंसान के बारे में जब बात करते हैं ना तो उसको कहते हैं कि हाथ, चेहरा, जिस्म के अज़ा वगैरह, लेकिन अब यहां पर जो है आपको ये बात तो पता ही है कि अल्लाह ताला जिस्म और अज़ा से बालातर है, बाला भी है बरतर है। तो फिर यहाँ पे कुरान में और यहाँ पे भी जा बजा जो अल्लाह के लिए यद का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, इसके मानी क्या है? इसके मानी ये है कि एक बात तो आप ये याद रखें कि ये मुतशाबिहात में से है, फिर दूसरी बात यानी जब मुतशाबिहात में से है तो इसकी कैफियत और हकीकत कोई इंसान मालूम नहीं कर सकता। फिर यहां इसके क्या मानी है कि अल्लाह को हर तरह की कुदरत और गलबा हासिल है, वो कायनात में जिस तरह से चाहे तसर्रुफ करे, उसे कोई रोक नहीं सकता, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो फिर क्या बात पता चलती है? बियदिल मुल्क, तो यहां पे अल मुल्क है, सिर्फ मुल्क नहीं है, तो जितनी बादशाहतें हैं ना दुनिया में वो सारी आर्जी हैं, उधार की हैं, महदूद हैं, और उनको बादशाहों को जो इख्तियारात हैं उन पर कमाल हासिल नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला की जात जो है उसका इक्तदार शहाना है, और उसका इक्तदार जो है वो लाजवाल है, और वो इस चीज पर कादिर है कि जो चाहे करे और जैसे चाहे करे। वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, और वो हर चीज पर कुदरत रखता है, जो चाहे वो करे, कोई उसे आजिज करने वाला नहीं है कि वो कोई काम करना चाहे और फिर कर ना सके, वो चाहे तो शाह को गदा कर दे, गदा कर दे, और गदा को गरीब को शाह बना दे, अमीर को गरीब कर दे और गरीब को अमीर कर दे, किसी को जिंदगी दे किसी को मौत दे दे, कोई उसकी हिकमत और उसकी मशीयत में दखल नहीं दे सकता। तो एक आयत के अंदर क्या बातें हमारे सामने आई? पहली चीज ये कि तबारुक, दूसरी बात ये कि बेअदहिल मुल्क, अल्लाह जी वो जात बेअदहिल मुल्क के सिर्फ जो है वो निहायत बुजुर्ग और बरतर ही नहीं बल्कि उसके हाथ में पूरी कायनात की बादशाहत है। आप सोचे तो सही, किसी के बारे में ये पता चले कि फलां इतने बड़े मुल्क का बादशाह है, उनकी इतनी जमीन है, उनका इतना इकतदार है, तो क्या एक शानो शौकत, एक अजमत, उसकी हैबत इर्द गिर्द के इलाकों पर जो है और लोगों पर जो है वो तारीफ हो जाती है कि सुपर ताकत, दुनिया की सुपर ताकत। लेकिन दुनिया की सुपर ताकत रशिया था पहले, रशिया कहां गया? रशिया से पहले कौन था? बर्तानिया था, कहां गया बर्तानिया? और अब आज की जो सुपर ताकत है अमेरिका, कौन कह सकता है कि कब तक है? तो जितनी भी सुपर ताकतें हैं, खा मुल्कों की सतह पर हो या फर्द की सतह पे, कोई अपने आप को कहे कि मेरी कुर्सी बड़ी मजबूत है, वो कोई भी बादशाह हो, वो कोई बादशाह, उन सारों की बादशाहत को जवाल है। वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत इस हकीकत को हम सबके सामने लाते हैं कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को क्यों बनाया, ये जिंदगी और मौत का सिलसिला क्यों जारी किया। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वही है जिसने इजाद किया, तख्लीक किया, पैदा किया मौत और जिंदगी को। तो पहली बात क्या पता चली कि मौत और जिंदगी उसकी तरफ से है, कोई दूसरा जिंदगी देने वाला नहीं है और ना मौत देने वाला है। तो डरना नहीं चाहिए, दबना नहीं चाहिए, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। दूसरी बात क्या पता चली कि जिंदगी और मौत को पैदा करने का मकसद लियब्लुवकुम, ताकि वो तुम्हारी आजमाइश करे। आजमाइश किस चीज की है? अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में से बेहतर अमल करने वाला कौन है, बेहतर अमल करने वाला कौन है। तो लियब्लुवकुम के मानी क्या हुए? दूसरी बात, इम्तहान। ये पूरी दुनिया एग्जामिनेशन हॉल है। मैं और आप और जिन, इंसान और जिन क्या हैं? सारे के सारे कैंडिडेट हैं, वो इम्तहान देने वाले हैं। और मुमतहिन कौन है? एग्जामिनर अल्लाह ताला। और हम किस चीज का इम्तहान दे रहे हैं? अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में से कौन दी बेस्ट काम करने वाला है। ये नहीं कहा अय्युकुम अक्सरु अमला, कि तुम में से ज्यादा काम करने वाला कौन है, ज्यादा अमल करने वाला कौन है। नंबरों की ज्यादती नहीं पूछी अल्लाह ताला ने, नवाफिल की कसरत नहीं, तस्बीह के दाने जो हैं उसकी कसरत नहीं। कल एक माँ का फोन था, माँ बड़ी परेशान थी अपनी बेटी की वजह से और बड़े क्राइसिस में वो औरत जा रही थी, और फिर बता रही थी कि किसी ने दो नफल पढ़ने का जो तरीका बताया है, हर रकत में पता नहीं कितनी तादाद में क्या क्या पढ़ना है, तो कह रही थी, हालांकि उसको समझ है सारी, लेकिन जब आजमाइश आती है ना तो इंसान फिर इधर उधर होने लगता है। तो कह रही थी कि क्या मैं ऐसे कर लूं? तो मैंने कहा कि ये तो ये चीज सही नहीं है ना, कि अपनी मर्जी से, क्योंकि हम दुआएं अज़कार वैसे मांग सकते हैं, लेकिन खुद से ही जो है उनकी तादाद मुकर्रर करके एक अंदाज, एक तरीका इख्तियार कर लिया जाए, ये बात तो सही नहीं है ना। तो बात क्या है? अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में से दी बेस्ट काम करने वाला कौन है। तो यहां तक कितनी बातें पता चली? तीन बातें पता चली। तो अच्छाई और बुराई का फैसला, इम्तहान के पास और फेल होने का फैसला जो है वो इस बात पर होगा कि कौन सा शख्स जो है वो अमलों में अच्छा है। फिर इसके बाद चौथी बात, वहुवल अजीजुल गफूर। फैसला कौन करेगा कि फलां पास हुआ और फलां फेल हुआ? इसका फैसला अल्लाह करेगा। ये इम्तहान लेने वाले का काम है। तो इम्तहान लेने वाला ये फैसला करेगा, मुमतहिन एग्जामिनर अल्लाह ताला, के हुस्ने अमल किसे कहते हैं। हुस्ने अमल का मायार मैं और आप मुकर्रर नहीं कर सकते। तो पांचवा नुक्ता, फिर क्या बात सामने आई कि वो इस बात पर भी गालिब है कि अपने नाफरमानों को सजा दे, और इस बात पर भी कादिर है कि जो अपने गुनाहों से तौबा करके उसकी तरफ लौट आए तो उनको माफ कर दे। तो ये जो आयत है ना, आयत नंबर 2, ये मेरी और आपकी जिंदगी को एक मकसद अता करती है। ये आयत, ये वही आयत है जो पहले भी आप पढ़ चुकी, वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून। کہ میں نے جن اور انسانوں کو اپنی بندگی کے سوا کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا. اور آپ آگے بھی پڑھیں گی اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ, کہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کو آزما کر دیکھیں. اور یہ جو آیت ہے یہ سورت دہر کی آیت ہے. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. سورت دہر کی آیت نمبر 2 اور 3. ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں, اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا, ہم نے اسے راستہ دکھا دیا, خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا بنے. آیت نمبر 2 سورت ملک سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ زندگی اور موت کی حقیقت کیا ہے. عام طور پہ انسان کیا سمجھتا ہے کہ جب مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کی زندگی کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ جو شخص بھی دنیا میں ایک دفعہ آ گیا, اب اس کی لامنتہائی زندگی کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا. تو انسان مرتا نہیں ہے, ختم نہیں ہو جاتا, بلکہ کیا ہے کہ اس کی جو جگہ ہے اس میں تبدیلی ہو جاتی ہے. تو ہمیں وہ نظر نہیں آتا, لیکن موجودہ دنیا کی زندگی میں اس نے جیسے عمل کیے تھے اس کے مطابق پھر وہ اپنی زندگی کا سلسلہ جاری رکھتا ہے. اور گویا کہ انسان کی زندگی کی کتنی سٹیجز ہیں؟ 3 سٹیجز ہیں. پہلی سٹیج جو دنیا کی زندگی میں ہے, کسی کو ایک گھڑی سانس ملتی ہے, ایک لمحے بھر وہ سانس لیتا ہے, اور کوئی 100 سال تک بھی جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ زندگی کی سانسیں گنتا رہتا ہے کہ اللہ کب بلائے گا, معذور, بڑھاپا, مجبور, دوبارہ بچپن کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے. تو کسی کی زندگی 10 سال, کسی کی 40, کسی کی 100 سے بھی اوپر. اور یہ پوری زندگی بہت محدود ہے, بہت مختصر ہے. اور خود اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار کہتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان جب اپنی موجودہ زندگی کو دیکھے گا تو اس وقت اتنا حیران ہوگا, اتنا پریشان ہوگا, اور اس وقت انسان جو ہے یہ پکار اٹھے گا, کیا کہے گا؟ اس وقت انسان کہے گا کَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا. تو اس کو پوری دنیا کی زندگی ایسے لگے گی جیسے کہ دن کا ایک آخری حصہ, یا پھر یہ کہ اس کا صبح کا حصہ, صبح یا شام, بس اتنا محسوس ہوگا, خواہ وہ کتنے ہی سالوں پر مشتمل کیوں نہ رہی ہو. تو دنیا کی زندگی مختصر ہے, ناپائیدار ہے, اور ہمیشہ نہیں رہنا. پھر دوسری زندگی قبر کی زندگی ہے, دوسری سٹیج زندگی کی. اور قبر کی سٹیج جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے دنیا کی زندگی پر کہ دنیا کیسے گزاری. اور قبر کی زندگی یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بن جاتی ہے, یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا. پھر تیسری زندگی جو ہے وہ جب حشر نشر ہوگا اور لوگوں کو جو ہے اعمال نامے یا دائیں ہاتھ میں ملیں گے یا بائیں ہاتھ میں, تو پھر انسان جو ہے وہ پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یا وہ جنت میں چلا جائے گا یا وہ جہنم میں چلا جائے گا. تو یہ 3 سٹیجز ہیں. تو سب سے لمبی سٹیج جنت یا جہنم کی ہے. قبر کی زندگی جو ہے وہ اس سے مختصر ہے, اور دنیا کی زندگی تو بہت ہی مختصر ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کی سٹیج, دنیا کی زندگی جب اتنی چھوٹی ہے, اتنی مختصر ہے, تو کیا پھر اس کو چھوڑ دیں؟ کیا اس میں مزے کریں, کھائیں پیئیں؟ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں ایٹ ڈرنک میری اینڈ ڈائی. لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ دنیا کی زندگی جو بہت مختصر ہے, بہت تھوڑی سی ہے, لیکن اگلی 2 زندگیوں کی سٹیج جو ہے نا وہ اسی پر ڈیپینڈ کرتی ہے. جیسے کسی کے پاس روٹی کا ایک ہی ٹکڑا ہو اور اس کے بچے بھوکے ہوں, وہ خود بھوکا ہو, وہ اس کو پرندوں کے آگے ڈال نہیں دیا کرتا. اس کے پاس پانی کی ایک ہی چھاگل ہو, ایک گلاس پانی کا یا ایک سراہی پانی کی, وہ صحرا کا سفر کر رہا ہو, صحرا کا سفر کرنا ہے, اور صحرا میں پانی کا ایک قطرہ زندگی اور موت کا سوال ہے, तो वो उस पानी से अपने हाथ और मुंह नहीं धोया करता, उस पानी को इधर उधर छिड़काव नहीं किया करता, फिर वो उस पानी का एक एक कतरा बचा कर रखता है कि क्योंकि सहरा में पानी की बड़ी अहमियत है। तो बिल्कुल ये जो जिंदगी में जितने भी मुझे और आपको लम्हात या घड़ियां मिली हैं, ये बड़ी मुख्तसर हैं, इसमें आखरत कमानी है, तो एक एक लम्हा जो है उसको सोच सोच कर गुजारें, फजूल बातों में जाया ना कर दें, लहवियात के अंदर, लाहुल हदीस, टीवी, कंप्यूटर, इंटरनेट, चैटिंग, नावल, अफसाने, गप शप, चैटिंग, फोन, गीबत, चुगली, झगड़े, लड़ाइयां, और जो है रूठे बैठे हैं और फिर माफ नहीं करते और माफी मांगते नहीं है, और इधर का शिकवा उधर का शिकवा, याद रखिए इतनी फुर्सत ही नहीं होनी चाहिए, इतना वक्त ही नहीं होना चाहिए कि इस तरह की बातों पर वक्त जाया किया जाए, क्योंकि गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मना दी, गर्दू ने घड़ी उम्र की एक और घटा दी। खेतों को दे लो पानी के बह रही है गंगा, खेतों को दे लो पानी के बह रही है गंगा, कुछ कर लो नौजवानों उठती जवानियां हैं। यूनान के दानिश्वरों ने वक्त की एक तस्वीर बनाई, उन्होंने कहा कि वक्त एक बूढ़ा है, मुसलसल भाग रहा है, उसके जो है वो दाएं हाथ में जो है वो दरांती है जिससे वो काट रहा है फसलों को, और उसकी फसल क्या है, जिंदगियों को काट रहा है, मौत। दूसरे हाथ में शीशा साथ है, शीशा है वक्त, वक्त का शीशा जिससे वो उम्रों को मापता है, उसके माथे पर बालों की एक लट लटक रही है, और अगर तुम इस बूढ़े को पकड़ना चाहते हो, अगर वक्त को कंट्रोल करना चाहते हो, तो इस बालों की लट से पकड़ लो, वरना ये दौड़ रहा है और दौड़ता चला जा रहा है। छोटी सी थी और वक्त के ऊपर एक तकरीर याद करवाई, मेरी बड़ी बहनें फौत हो चुकी हैं, और उस वक्त उन्होंने मुझे ये लिखवाया था और आज भी याद है, और पता नहीं कब याद किया था, एक स्पीच कंपटीशन था कोई, उसमें याद किया था। तो देख लें कि छोटे वक्त की और बड़ों की मेहनतें मुशक्कतें कितना फायदा वैसे देती है ना। और मुझे, मैं उस वक्त नहीं समझ आई थी कि ये क्या मतलब है, शीशा साथ क्या है और ये दरांती क्या है और बालों की लट क्या है, लेकिन अब समझ आती है कि वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है, और यूनान के दानिश्वर उन्होंने यही बताया कि जिंदगी बहुत तेज से गुजर रही है, और उनसे क्या समझना, मेरा और आपका तो कुरान है, अल्लाह है, बार बार ये कहता है अय्युकुम अहसनु अमला। अब ये देखते हैं कि जब वक्त इतना थोड़ा है और इतनी तेजी से गुजर रहा है, तो फिर हुस्ने अमल क्या है। अब आप देख लें, आप लोग कभी आपको दुल्हन जी कह के मुखातिब किया करते थे ना, कभी आपको अपनी जवानी पर एक नाज था, कभी अपना चेहरा, अपना हुसन, अपनी आंखें, और अब चेहरे की झुरियां। वो सुना मलका तरन नूर जहां ने जो है वो चेहरे की झुरियां हटाई, कैसे, प्लास्टिक सर्जरी कराई, और फिर क्या किया कि वो सारी जो थी वो, मैंने कहा फिर वो कहां गई, उसकी झुरियां कहां गई, तो सारी गले में इकट्ठी करके कहां जाएंगी, फिर उसमें वो रुमाल बांधा करती थी जब उसकी वो सर्जरी हो गई थी, तो उसके बाद वो जो भी स्किन को खींच कर, क्योंकि वैसे भी पूछना चाहिए कि फिर होता क्या है, लेकिन मौत को तो कोई रोक ना सका, मौत तो वो आ गई ना, वो अमीर पर भी आती है, वो गरीब पर भी आती है, जो कितनी मोहब्बत क्यों ना करे दुनिया से उस पर भी आती है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा, अब मैं और आप करें क्या, इस बात पर परेशान ना हो कि जवान है, पहले जवान थे और अब बूढ़े हो रहे हैं, परेशान तो इस बात पर हो कि वक्त थोड़ा रह गया है, तो गोद में क्या है, नामाए अमाल कैसे हैं, क्या लेके जाऊंगी अमाल की पूंजी, जो कह सकूं कि अल्लाह ताला ये सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए थी। और उसने अमाल किसे कहते हैं, इसके लिए एक तारीफ लिख लें। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह आयत तिलावत की, الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, फिर जब आप यहां तक पहुंचे अहसनु अमला, फिर आपने फरमाया अहसनु अमला वो शख्स है जो अल्लाह की हराम की हुई चीजों में से सबसे ज्यादा परहेज करने वाला हो और अल्लाह की अतात में हर वक्त मुस्तैद और तैयार हो। उसको कहते हैं कि ये है वो शख्स जो कि बेहतरीन अमल करने वाला है, अहसन अमला। तो देख लीजिए कि इस तारीफ के मुताबिक मैं और आप कहां खड़े हैं। वहुवल अजीजुल गफूर, और वो जबरदस्त भी है और दरगुजर करने वाला भी। तो अल्लाह की एक सिफ दूसरी से टकराती नहीं है, अल्लाह ताला वो के गालिब है, वो के बेइंतहा जबरदस्त है, इसके बावजूद अपनी मखलूक के हक में रहीम है, गफूर है, जालिम और सख्त गीर नहीं है। दूसरे ये कि बुरे अमल करने वालों को सजा देने की वो पूरी कुदरत रखता है, किसी में ये ताकत नहीं कि उसकी सजा से बच सके। लेकिन जो अपने गुनाहों पर नादिम हो जाए, जो जिसके आंसू बहने लगे, खताकार होने का एहसास उस पर गालिब आ जाए, और जब वो नादिम होकर बुराई से बाज आ जाए और माफी मांग ले, तो अल्लाह उसके लिए फिर अल अजीज नहीं है, अल गफूर है। और आपको पता है ना, सात किस्म के लोगों को अर्श के साए के नीचे जगह मिलेगी, इनमें से एक कौन है? जो अल्लाह के डर से, यानी उसको गुनाह की दावत भी मिले और वो अल्लाह के डर से, अल्लाह के खौफ से फिर गुनाह छोड़ देना, और वो फिर वो नौजवान जो औरत पर पूरी तरह कुदरत रखता था और अल्लाह के डर और अल्लाह के खौफ से उसने जो है उसको छोड़ दिया, जबकि उसको पैसे भी दे चुका था बदकारी करने के लिए। उस औरत ने यही बात कही थी ना, बस कि अल्लाह से डर, इससे पहले मेरी बकारत की जो सील है ये किसी ने तोड़ी नहीं है, तो अल्लाह से डर मेरे बारे में। और फिर वो ऐसा कांपा कि उसने उसको छोड़ दिया औरत को। इसको कहते हैं कि हराम कामों से रुक जाना, इसको तकवा कहते हैं। फिर इसके बाद जो है आप देखें कि तीसरी जो आयत है, इसमें अल्लाह ताला कायनात की तरफ मुतवज्जो कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत बता रहे हैं कि मेरी कायनात जो है, बड़ा इसका हकीमाना निजाम है, बड़ा हिकमत से मैंने अपनी कायनात को बनाया है, और तुम जरा इस पर गौर व फिक्र और तदब्बुर तो करो। अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा, अल्लज़ी मुज़ात खलक़ा, जिसने पैदा किया सबअ समावातिन, सात आसमान, और आसमान भी कैसे तिबाक़ा, तह बतह। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे क्या बात बताई, सात आसमान बनाए और जो है वो तह बर तह बनाए। और आपने ये बात पढ़ी है कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए थे, तो उस वक्त जो है आप जो है वो सात आसमानों पर आप मुख्तलिफ अंबिया से आपने मुलाकात की। तो कुरान भी इसकी दलील देता है कि आसमान सात हैं, और इसके अलावा हमें हदीस से भी इसकी दलील जो है वो मिलती है। अब सवाल ये पैदा होता है, तिबाक़ा, तिबाक़ा के क्या मानी है? तिबाका के मानी है कि एक के ऊपर दूसरा, एक के बाद दूसरा, गोया के तिबाका का लफ्ज जो है वो ऊपर तले के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कि वैसे तो तय बर तय के लिए कुरान में पांच लफ्ज आए हैं, और उसमें से पहला दर्जा तिबाक का है, और इसका रूट है तोयबा काफ, एक चीज के ऊपर इसके बराबर दूसरी चीज रखना ताकि फिट बैठ जाए, मुताबकत उसके अंदर हो, उसको कहते हैं तिबाको। उसने तह बर तह सात आसमान बनाए। अब आप देख लें, आप कमीज सीती हैं, और ऐसी कमीज जिसका अस्तर उसके साथ ही सिया जाए, तो होता क्या है, तो दो जो उसके परत है ना कपड़े के, वो इकट्ठे एक जैसे के वो आपस में फिट आ जाएं, वो भी मुश्किल हो जाते हैं, बहुत अच्छे जो टेलर्स होते हैं उनसे भी। और जो लोग शमीज नीचे पहनते हैं, वो भी एक तरह से एक तबक है उसके नीचे, लेकिन होता क्या है कि किसी की शमीज इधर को निकली हुई होती है, किसी की उधर को निकली हुई होती है, और बहुत बुरी लगती है ऐसी कमीजें कि शमीजें इधर उधर दौड़ रही हैं, और या फिर ये कि कभी शमीज लंबी होती है और उसका ऊपर का कपड़ा जो है वो ऊंचा होता है, तो एक जैसी चीज के एक दूसरे पर फिट आ जाए इतनी आसान नहीं है, और हमारे लिए तो मुमकिन ही नहीं है। अल्लाह ताला ने एक नहीं, इतनी बड़ी चादर, इतना बड़ा आसमान, इतनी नीली छत, इतना बड़ा जो है वो खैमा जो नीले रंग का है, कहीं कोई सुतून भी नजर नहीं आता, तो उसको अल्लाह ताला ने तह बर तह सात बनाए। और साथ ही अल्लाह ताला चैलेंज कर रहे हैं, चैलेंज क्या है, मा तरा फी खल्किर रहमानी मिन तफावत, नहीं तुम देखोगे रहमान की तखलीक में, मिन तफावत, कोई तफावत। तफावत के मानी क्या है, तफावत जो है ये फौत से है, फावोता, फौत के माने क्या होते हैं? किसी चीज का खत्म हो जाना, और कोई चीज जो है उसके अंदर जो है वो, जैसे वो चीज गायब हो जाए, वो चीज नजर ना आए, है ना। तो अब यहां पर जो बात बताई जा रही है वो ये कि ऐसा नहीं है कि रहमान ने जो 7 आसमान बनाए हैं और वो हमारे आसमान हमारी नजरों से ओझल हो जाए। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम इन आसमान की तरफ देखो, तुम रहमान की तखलीक में किसी किस्म का कोई तफावुत नहीं पाओगे। तफावुत के माने कोई बेरबतगी नहीं पाओगे, कोई अदम तनासुब नहीं पाओगे। ऐसे नहीं होगा कि एक चीज का दूसरी चीज से मेल ना हो या वो बेजोड़ हो। जैसे मैंने अभी आपको ऐसे ही मिसाल दी है कमीज की और शमीज की, कि अस्तर लगा के सीना तो और वो कहते हैं कि ज्यादा मुश्किल है, और शमीज आपस में कम ऐसा होता है, ज्यादातर मेल नहीं खाती, लेकिन 7 है और इतने बड़े आसमान, और इसके बावजूद जो है बिल्कुल उनके अंदर एक रब्त है, एक उनके अंदर तवाजुन है, एक उनके अंदर तनासुब है। तो आप ये भी देखें कि जैसे कहते हैं कि 7 आसमान हैं और फिर 7 ही जमीनें भी हैं, आप पढ़ चुकी ना पीछे भी, तो कहते हैं ऐसे ही है जैसे कि प्याज के छिलके, उनके दरमियान कोई फासला नहीं होता, जबकि हर आसमान से दूसरे आसमान के दरमियान तूल तवील फासला भी है, लेकिन हर आसमान दूसरे आसमान से एक मुताबकत रखता है। तो आप इसको यूं भी कह सकती हैं कि 7ों आसमान जो हैं, अल्लाह ताला कहते हैं कि उनके अंदर कोई कजी नहीं है, कोई नक्स और खलल नहीं है, बिल्कुल सीधे हैं, बराबर हैं, और इनके अंदर एक तनासु पाया जाता है। अल्लाजी खलक सबअ समावातिन तिबाका, वो है जिसने पैदा किए 7 आसमान ऊपर तले। नहीं देखेगा तू रहमान की तखलीक में कोई फर्क, कोई खलल, कोई बेजाबतगी या चूक या भूल, कुछ भी तुम्हें कमी नजर नहीं आएगी। और यहाँ पे खास तौर पे रहमान का जिक्र किया गया, और रहमान कौन है? अल्लाह, बहुत ज्यादा रहम करने वाला। तो ये जो 7 आसमान जो बनाए हैं और खलल भी उसमें कोई नहीं है, तो ये अल्लाह की सिफते रहमानियत का इजहार है, ये कायनात की तखलीक। फिर फरमाया फर्जिल बसर हल तरा मिन फुतूर, फर्जे फर्जे बस दोबारा लौटा। अब रुजू करना, लौटना है ना, आपने पीछे तलाके रजई भी पढ़ा, तो रजुन होता है किसी चीज का लौटना, फर्जे ऑर्डर का सीगा है, पस लौटा किसको? अल बसरा निगाह को। अब एक दफा देखा है, कोई तफावुत नजर नहीं आया, कोई कमी नजर नहीं आई, अल्लाह ताला कहते हैं फिर देख, दोबारा देख, हल तरा मिन फुतूर, क्या देखता है तू कोई दराड़ या शगाफ। और यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल हुआ है किसका? फुतूर का। और फुतूर का लफ्ज जो है ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? ये लफ्ज इस्तेमाल होता है शगाफ सुराख के लिए। कुरान में 2 लफ्ज आए हैं, आपने पीछे सूरत तहरीम में फुरूज पढ़ा है ना, तो फुरूज जो है फर्ज के मानी होते हैं कुशादगी में तसव्वुर पाया जाए। इसका ये नहीं मतलब कि फटा हुआ है, फटने या चिरने का नहीं, बल्कि फराजा के मानी होते हैं किसी चीज का खुला हुआ होना, कुशादा होना, खुला करना। फराजा 2 चीजों या एक ही चीज के 2 हिस्सों के दरमियान वुसअत को कहा जाता है। जैसे फर्ज तरीक रास्ते का दरमियानी हिस्सा भी होता है, या फिर सुराख या शगाफ खा उसकी साख में हो या वैसे बोध में वाकया हो। और आप देखें जैसे शर्मगा, तो क्या है कि वुसअत है 2 हिस्सों में ना, दरमियान में, तो और ये शगाफ पदेशी होता है, और बाज़ुकात ऐसे भी कहते हैं कि बाद में वाकया हो गया, लेकिन फुरूज में कुशादगी का तसव्वुर पाया जाता है, और कुशादगी का तसव्वुर किस में? शगाफ में। अच्छा, फुतूर पहला दर्जा है, फुतूर फा तोय रा से है और फता रा से है, अब अफतारी भी करती है ना, फतरा के मानी होते हैं किसी चीज को लंबाई के रुख फाड़ना या चीरना, इन फतरा के मानी है चीर जाना। फुतूर ऐसे शगाफ को कहते हैं जिसकी चौड़ाई लंबाई की निस्बत बहुत कम हो, तो लंबाई के रुख फाड़ना। अब आप देखिए दिन कितना लंबा होता है, तो रोजा रखा होता है आपने, फिर आप लंबाई के रुख पे उसको फाड़ कर अफतारी कर लेती हैं। तो रोजा जो रखा हुआ था आपने उसको जो है फिर खोल लिया। अब अल्लाह ताला कहते हैं यहाँ पे दावत निजारा दे रहे हैं कि कायनात पर गौर व फिक्र करो, कायनात पर तदब्बुर करो, कहीं तुम्हें पूरी कायनात के अंदर कोई रखना नजर आता है, कोई दरार, कोई शगाफ, कोई फटा हुआ टूटा फूटी कोई तुम्हें पूरी कायनात में कुछ चीज नजर आती है। जैसे और यहाँ पे इशारा है आलमे बाला की तरफ, आसमानों को देखो, आसमान को देखो और आप देखें फिर जमीन के एक जर्रे से लेकर ये जितनी गैलेक्सीज हैं जो अपने अपने ऑर्बिट में चल रही हैं, तो एक पूरा एक डिसिप्लिन है, एक नज्म है, इसमें कोई ऐप कोई कमी जो है वो नजर नहीं आती। तो एक दफा देखा तो कोई जो है वो खलल नजर नहीं आया, दूसरी दफा देखने की दावत दी के फिर देखो कि क्या तुम्हें कोई सुराख नजर आ रहा है, तो आप आसमान पर जरा नजर दौड़ाएं, आसमान पर नजर दौड़ाएं, क्या आपको कोई सुराख नजर आता है? देखें आपको आसमान नजर आ रहा है ना। और आप बाहर भी जब निकलें तो आप देखें रात के वक्त तारे निकले होते हैं और दिन के वक्त भी, और कहीं कोई सुराख नजर नहीं आता। कहा तुम मर जेल बसारा, फिर दौड़ा नजर, दोबारा नजर दौड़ा, अब फिर सुम्मा जो आ गया, सुम मर जेल बसारा, बार बार निगाह दौड़ा, बार बार देख, कर्रा तैनी, कर्रा तुन वाहिद है, कर्रा तैन तकरार है, ये तस्निये का सीगा है, कर्रा तैन दो बार, कर्रा तैन दो मरतबा दोबारा, तो दोबारा अपनी निगाह को दौड़ाओ, यन कलिब एलेही का, लौट आएगी तेरी तरफ। तो कलब के मानी क्या होते हैं? हालत की तब्दीली। तो यन कलिब वो लौट आएगी, इलेही का तेरी तरफ, किसकी तरफ? जो नजर दौड़ा रहा है, जो देख रहा है तो उसकी तरफ लौट कर आएगी। क्या चीज? अलबसरु निगाह। जब निगाह वापिस आएगी इंसान की लौट कर, तो उसकी हालत क्या होगी? दो हालतें होंगी, एक है खासियन और दूसरी है वहुआ हसीर और हसीर। तो अब जो है सवाल ये पैदा होता है कि खासियन का लफ्ज और हसीर का लफ्ज अल्लाह ताला ने यहां पर इस्तेमाल किया है, इसके मानी क्या है? इसके मानी ये हैं कि इंसान की जब नजर वापस आएगी तो नंबर एक के वो जो है वो, जैसे खासियन किसे कहते हैं, आप पहले भी इसको पढ़ चुकी हैं कि वो चीज जो कि नामुराद हो, जलील हो जाए, जलील होना, ख्वार होना, उसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है और ये इसम फाइल का सीगा है। और दूसरा जो है हसीर, हा सीन रा, इसके मानी होते हैं कि किसी का थका हुआ होना। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि तेरी नजर जब लौट कर वापस आएगी तो उसका हाल ये होगा कि वो थकी हुई भी होगी। जैसे होता है ना कि बार बार एक चीज को देखा जा रहा है और इसके बाद भी जो है उसमें कोई भी कमी, कोई भी चीज जो है ढूंढने से भी कोई उसके अंदर कमी, शगाफ, सुराख, कमजोरी जो है वो नजर ना आए, तो उसके लिए ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो अब यहाँ पे जो दो लफ्ज इस्तेमाल किए गए हैं यके बाद दीगरे, तो इस बात की जो है वो शिद्दत को जाहिर करना मकसूद है कि इंसान जो है अल्लाह ताला की तखलीक में कोई कमी बेशी ढूंढे भी तो उसको मिल नहीं सकती, तो निगाह इंसान की जलील होकर और थकी हुई जो है फिर दोबारा इंसान के पास वापस आ जाती है। तो ये है अल्लाह ताला की कायनात जो अल्लाह ने बनाई है उसका एक डिसिप्लिन और उसका नज्म व ज़ब्त, और ये काम कौन कर सकता है? और ये बड़ा मुश्किल काम है कि सरों पर फैला हुआ वसी व अरीज आसमान और उसके अंदर जो है जरा सी भी कोई कमी बेशी, कोई जरा सा सुराख जो है वो नजर ना आए। और आप देख लीजिए कि यहां पर जैसे खासियन इस्तेमाल जो हुआ है इसके अंदर दो चीजें पाई जाती हैं, एक है नजर का थकना और कमजोर होना, दूसरा जो है जैसे धुतकारे हुए कुत्ते और सुअर के लिए भी ये इस्तेमाल किया जाता है कि जिनको लोगों के पास फटकने ना दिया जाए, उसको खासी कहते हैं। तो खासीन हमजा, नजर का थकना और कमजोर होना, और नंबर दो खासियन मिनल खनाजीर वल किलाब, खांसी जो है ना, ये या तो सुअर के लिए इस्तेमाल किया जाता है या फिर कुत्ते के लिए। और आजकल आप देख लें कि सुअर से जो है वो एक जो फ्लू निकला हुआ है, कैसे लोग सब डर रहे हैं और भाग रहे हैं और दौड़ रहे हैं ना। तो बहरहाल खांसी धुतकारे हुए जलील तरीन के लिए आता है, तो नजर जो है इतनी थक जाएगी जैसे कि जलील हो जाए। और सिर्फ इतनी नहीं बल्कि उसके साथ जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हसीर का लफ्ज भी इस्तेमाल किया है। तो इससे बताना ये मकसूद है कि अल्लाह ताला की ये हैं कुदरत के कमालात। फिर आयत नंबर 5 में फरमाया, वलकद ज़य्यन्ना समाअ अद-दुनिया बिमसाबीहा वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन वअअतदना लहुम अज़ाबस सईर। वलकद ज़य्यन्ना, और हमने आरास्ता किया है। किसने आरास्ता किया? अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला कहते हैं कोई और नहीं, हमने आरास्ता किया है। और आपको पता ही है कि ज़ा या नून इसका रूट है और इसके मानी होते हैं, और यहां पे शद भी आई है, तो खूबसूरत बनाया, डेकोरेट कर दिया, सजा दिया। तो हमने सजाया, सजाने वाला कौन है? अल्लाह ताला। किसको? अस्समा अद-दुनिया, दुनिया के आसमान को। तो दुनिया का लफ्ज जो है ये करीब के लिए भी आता है, दनू दाल नून वो, इसके मानी क्या होते हैं? दुनिया का लफ्ज हकीर और जलील के लिए भी आता है और करीब के लिए भी आता है। आपने पीछे पढ़ा था ना कि दानियातुन के शगुफे जो हैं झुके पड़े होंगे, कुतुफुहा दानिया। तो अब यहां पे कहा जा रहा है कि करीब का आसमान, तो हमने करीब के आसमान को सजा दिया है किससे? बिमसाबीहा। तो मिसबा की जमा है मसाबी, और ये चिरागों के लिए इस्तेमाल किया गया। तो कौन से चिराग? सितारे मुराद हैं। सूरत सुआफात में आप पढ़ चुकी, इन्ना ज़य्यन्ना समा अद-दुनिया बिज़ीनतिल कवाकिब, कि हमने करीब वाले आसमान को बड़ी जीनत दी और सितारों के जरिए जीनत दी। और रात के वक्त अगर आसमान को देखें तो सितारों की जगमगाहट, सितारों का चमचम करना जो है वो बहुत एक खूबसूरती जो है वो पैदा करता है। और ये सितारों का जगमग जगमग करना निगाहों को बड़ा हुसन देता है, बहुत भला लगता है। तो उसी की तरफ जो है ये तवज्जो दिलाई। और यहां पे इसका ये एक मकसद बताया कि सितारों को जो करीब के आसमान पर रखा है, तो उसका मकसद जो है वो सितारों के जरिए से आसमान को खूबसूरत बनाना। और खास तौर पर रात के वक्त अगर जो है आसमान की शान को हम देखना चाहें, तो रात का अंधेरा और सितारों का चमकना जैसे कि हीरे और जौहरात जो हैं एक काले कपड़े पर जो है वो लगा दिए गए हैं, जड़ दिए गए हैं, टांग दिए गए हैं। तो आसमान की शान, उसकी जगमगाहट से पता चलता है कि इसका बनाने वाला जो है वो कैसा है? खालिक है। उसका बनाने वाला जो है वो अल्लाह है, फातिर उस समावाती वल अर्द। फिर इसका जो है एक और मकसद भी है, वो क्या है? वह जअलनाहा, और हमने बना दिया है इसको रुजूमन, रजम की जमा है रुजूम, और रा जी मीम के मानी क्या होते हैं? पत्थर मारना। और वैसे ये मादी और हिस्सी दोनों तरह इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वाकया इफ में जो इल्जाम लगाया गया था तो वो क्या था कि इज्जत पर जो इल्जाम लगाया था तो वो जाहरी तौर पर तो पत्थर नजर नहीं आ रहा था, लेकिन ये कि उन्होंने जो है वो इल्जाम लगाया था ना, और वो काजिफ, कज़्फ और मकजूफ। तो उसमें भी उन्होंने जो है वो क्या किया था कि इज्जत पर इल्जाम लगाया था, तो हिस्सी तौर पर भी ये महसूस किया जाता, जैसे इज्जत पर बट्टा लगा देना, किसी की इज्जत पर बट्टा लगाना, पत्थर मारना। तो ये जो सितारे हैं इनको अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने बनाया है रुजूमल लिश्शयातीनी, शयातीन को मार भगाने के लिए। वअअतदना लहुम अज़ाबस सईर, और ये जो शैतान हैं इनके लिए हमने भड़कती हुई आग मुहैया कर रखी है। तो लोग दो तरह के हैं, एक वो जो हुस्ने अमल करते हैं और अताअत करते हैं, और एक अल्लाह की मखलूक ऐसी है जो अल्लाह की कायनात में जब अल्लाह का कहना नहीं मानती, और ये शैतीन जो है जब आसमानों की तरफ जाने की कोशिश करते हैं ताकि वहां से कुछ सुनगुन ले सकें और चोरी छुपे जो है कुछ सुन सकें, तो फिर उस वक्त उन्हें जो है वो मार भगाया जाता है। तो ये सितारे जो हैं शरारा आग बनकर इन पर गिरते हैं। आप पहले पढ़ चुकी इल्ला मनिस तरक समा फअतबाहु शिहाबुम मुबीन, सूरत हिज्र में आपने पढ़ा। और इसका तीसरा मकसद भी आप पढ़ चुकी हैं पहले। तीसरा मकसद क्या है इन सितारों का, कि इनसे बर और बहर में रास्तों की निशानदेही होती है। तो ये सितारों के बहुत से मकासिद हैं जो हमारे सामने आते हैं। और जो है वो अहले अरब ये समझते थे कि काहिन जो है, कुछ शैतान काहिनों के जो है वो मुती हैं, और काहिनों का शयातीन से राबता है, और शयातीन ऊपर से जाते हैं तो आलमे बाला की खबरें लाकर उनके काहिनों को दे देते हैं। तो इस तरह उनके काहिन जो है वो गैब की खबरें जानते हैं। तो पहले अल्लाह ताला ने कहा कि आसमानों में कोई सुराख है ही नहीं, कोई फुतूर नहीं है, कोई तफावुत नहीं है, कुछ कमी कजी नहीं है। फिर साथ ही बताया कि हमने तो सितारों के जरिए जो है सितारे जो लगाए हैं, तीन उसके मकासिद कुरान में तीन मुख्तलिफ जगह पे, और दो यहाँ पे हैं, एक सजावट, दूसरा शयातीन को मार भगाना, और तीसरा जो है वो बहर और बर में रहनुमाई। वा तदना लहुम अजाब बसईर, और जो करे मेरी नाफरमानी तो उनके लिए हमने तैयार की है भड़कती हुई आग सईर। तो अब यहां पर जो है वो क्या बताया कि उनके लिए जो जहन्नुम है, जो आग है, वो भड़कती हुई है। अब देखें कि आयत नंबर 1 से लेकर 5 तक तो इंसान को एहसास दिलाया कि जिस कायनात में इंसान तू रहता है, ये कायनात बड़ी मुनज्जम है, ये बड़ी मोहकम है, तुझे ढूंढने से भी कोई ऐब नहीं मिलता, और तू दुनिया में इम्तहान के लिए भेजा गया है। तो हुस्ने अमल फिर कर। तो हुस्ने अमल कैसे करेंगे? कुरान और सुन्नत के मुताबिक, ईमान भी हो और फिर कुरान और सुन्नत के मुताबिक। फिर आयत नंबर 6 से लेकर 11 तक जो कुफर करते हैं, जो अल्लाह का इनकार करते हैं, उसके हौलनाक नताइज बताए गए हैं। बड़े बड़े शिद्दत है इन आयात के अंदर। फरमाया वल्लज़ीना कफरू बिरब्बिहिम, और रहे वो लोग जिन्होंने अपने रब का इनकार किया। कफरू बिरब्बिहिम, किसी और का रब नहीं, अपने रब का कुफर किया, खा वो इंसान है या जिन। क्योंकि लिल्लज़ीना, इंसानों के लिए और जिन्नों के लिए, सबके लिए आया है, जो अपने रब का इनकार करें, अजाबु जहन्नम, उनके लिए जहन्नुम का अजाब है। और जहन्नुम क्या है? ये हर तरह का दुख, तकलीफ, परेशानी, मुसीबत, अजाब, सजा, और जिसका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता, उन सब चीजों का जो मजमुआ है वो जहन्नुम है। तो जहन्नुम किसके लिए अल्लाह ताला ने तैयार की है? ये अल्लाह ताला ने तैयार की है अपने काफिरों, काफिर बंदों के लिए, जो उसके नाफरमान हैं। वलिल्लज़ीना कफरू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम, उनके लिए जहन्नुम का अजाब है। और आपको पता है कि यहाँ पे जहन्नुम का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, और जहमा के मानी क्या होते हैं? घूरना। और घूरने में आप देखें कि शेर जैसे घूरता है, तो जहन्नुम भी अपने जो है वो शिकार की तरफ जो है वो घूरेगी घूरेगी। तो बड़ी हौलनाक है ये जहन्नुम। तो भूखा शेर शिकार को देखकर धाड़ता है, जोश मारता है, घूरता है, बिल्कुल इसी तरह जहन्नुम जो है वो अपने शिकार को देखकर जो है वो घूरेगी। वह बेसल मसीर, और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। तो आप देखें बेसा शिद्दत है इसके अंदर, कि निहायत ही बुरा मर्जे है, निहायत ही बुरा ठिकाना है। तो ऐ इंसान, तूने हमेशा के लिए अपना कैसा ठिकाना मुंतखब किया, वो कितना बुरा है। और उसका हाल तो ये है, इज़ा उल्कू फीहा, जब वो उसमें डाले जाएंगे, जब वो उसमें फेंके जाएंगे। उल्किया माजी मजहूल है, और ये जमा मुजक्कर का सीगा है, कि जब वो इसके अंदर डाले जाएंगे। फीहा इस जहन्नुम में, हा की जमीर आई है जहन्नुम के लिए। समिउ लहा शहीकं वहिया तफूर, तो वो सुनेंगे इसके धाड़ने की आवाज। शहीकन, शहीकन जो है ये किसे कहते हैं? शीन हा काफ, और इसके मानी है, मुफस्सरीन ये कहते हैं कि गधे के हींकने के वक्त उसकी आवाज जो इब्तदा में निकलती है, और उसको क्या कहते हैं? शहीक। एक है ना जफीर, और एक है शहीक। और यहां पे बताया जा रहा है कि जहन्नुम ऐसे दाड़ेगी कि उसके धाड़ने की हौलनाक आवाज को वो सुनेंगे, क्योंकि जफीर होता है लंबा सांस बाहर निकाला जाए। तो मुफस्सरीन ये कहते हैं कि गधे के हींचने की इब्तदाई आवाज जो आहिस्ता से ऊंची होनी शुरू हो जाती है उसको जफीर कहा जाता है, और जब गधा हींचने के अमल को खत्म करने लगे तो वो आवाज जो ऊंची आवाज से पस्त होना शुरू होती है उसे शहीक कहते हैं। बाज कहते हैं इब्तदाई को, बाज कहते हैं उसकी इंतहा को। बहरहाल जितनी भी आवाजें हैं उनमें सबसे बुरी आवाज गधे की आवाज लगती है। एक गधा जब हींचता है, और गधा जो है जब अपनी जोरदार आवाज को निकालता है तो बड़ी कबीह तरीन आवाज ये महसूस होती है। तो कहा जा रहा है कि जहन्नुम भी गधे की तरह चीख रही होगी, चिल्ला रही होगी, और इसके चीखने और चिल्लाने का हाल ऐसा होगा कैसा कि शहीक ही नहीं वह है तफूर, और वो जोश खा रही होगी। तफूर, और तफूर के मानी होता है उबलना, जोश मारना। आपने आग पर रखी हुई हांडी को देखा है कभी? कि आग पर रखी हुई हांडी जो है वो कैसे उबलती है, कैसे जोश मारती है। तो यहां पर जो है आप जरा तसव्वुर तो करें, तो हत्ता कि उसके अंदर से जो धुआं भी निकलता है ना तो वो भी जला देता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि उस दिन जहन्नुम जो है वो उबल रही होगी, जोश मार रही होगी। और उबलने और जोश मारने के लिए कुरान में तीन लफ्ज आए हैं, और ये उसका सबसे हाईएस्ट दर्जा है, फारा, तीसरा दर्जा। फारा हांडी के जोश मारने, चश्मे से पानी उबलने के लिए, फवारा भी इसी से है, आग के जोश मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कहते हैं फारा का लफ्ज उस वक्त इस्तेमाल किया जाएगा जब उबाल जल्दी जल्दी उठ रहा हो, और अल्फौर बहुत जल्दी के भी है ना, फौरन फौरन आप जल्दी जल्दी करना चाहती हैं कुछ, तो इसके लिए भी ये इस्तेमाल किया जाता है। और फिर ये कि इसके अंदर तसलसल भी पाया जाता है, जैसे फवारा नहीं होता कि पानी तसलसल से जो है ना वो जोश मार रहा होता है। तो किसी चीज में शिद्दत भी हो, जल्दी भी हो, और उसके साथ उसके अब उबाल में तसलसुल भी हो। तीन बातें इसके अंदर, तीन बातें, शिद्दत, जल्दी, और फिर उबाल में तसलसुल। वाहिया तफूर तकादु तमय्यज़ु मिनल ग़ैज़, शिद्दते गजब से फटी जाती होगी। तमय्यज़, तमय्यज़ जो है इसके अंदर दो मानी पाए जाते हैं, एक तो किसी का फटना और दूसरा उसका अलग हो जाना। तो इतना ही नहीं कि वो जो है वो फटेगी, बाजू का है ना फट कर किसी कोई चीज उसके अंदर दड़ाड़ आ जाती है, लेकिन कहा कि नहीं वो फटेगी भी और उसके बाद जो है फटकर अलग हो जाएगी, बड़ा शदीद वक्त होगा। उल्लमा उल्किया फीहा फौजुन सालहुम खजानतुहा अलम यातिकुम नजीर। जब कभी उल्किया फेंके जाएंगे, डाले जाएंगे, फीहा इसमें, किसमें, जहन्नुम में, फौजुन, फौज किसको कहते हैं, एक बहुत बड़े मजमे को, एक बहुत बड़ी जमात को, एक बहुत बड़े गुरोह और अम्बोह को। जब एक बहुत बड़ा गुरोह और जमात इस जहन्नुम के अंदर फेंकी जाएगी, सालहुम सवाल करेंगे उस गुरोह से, खजानातुहा उसके दरोगा, उसके फरिश्ते, अलम यातिकुम नजीर, क्या तुम्हारे पास कोई खबरदार करने वाला ना आया था। तो दोजख के फरिश्तों के लिए कुरान में तीन लफ्ज आए हैं, एक है ये खजानत, ये खाजिन की जमा है, खाजिन वाहिद है और खजानत जमा है। और खजन में दो बातें पाई जाती हैं, नंबर एक जमा करना और दूसरा हिफाजत करना। अब वो जो जहन्नुम के चौकीदार और पहरेदार हैं वो क्या करेंगे, वो जितना भी वो ये जो फौज है ना सारी को उसके अंदर जमा किया हुआ है, और फिर उनकी हिफाजत भी हो रही है, कोई निकल नहीं सकता, कोई भाग नहीं सकता, उनके अजाब में कोई कमी बेशी नहीं हो सकती। जहन्नुम के दरोगा है ये। दूसरे का नाम जबानिया है, दूसरा जो दोजख के फरिश्तों के लिए नाम कुरान में आया है जबानिया। जबानिया वैसे बिच्छू के डंक को भी कहते हैं। अब देखें बिच्छू का डंक कितना सख्त होता है ना, कितना शदीद होता है। तो दोजख के सख्त गिर फरिश्ते हैं जो दोजखियों को दोजख की तरफ धकेलेंगे। और तीसरा लफ मालिक का भी आया है, और ये दोजख के दरोगों का, दोजख के जितने फरिश्ते हैं उनका सरदार होगा। तभी तो पहले तो वो फरिश्तों से भी दरखास्त करेंगे जहन्नमी, और बीच में फिर वो दोजख के जो सरदार होगा उसको कहेंगे वना दो या मालिकु लियक्दी अलैना रब्बुक। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अब वो जहन्नुम के अंदर डाल दिए गए हैं, और जहन्नुम के दरोगा, जहन्नुम के फरिश्ते इन नाफरमानों से, इन काफिरों से, इनसे पूछेंगे अलम यातिकुम नजीर, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था? तो नजीर कौन है? नजीर जो है ये पैगंबरों को कहा जाता है कि कोई ऐसा पैगंबर नहीं आया था जो तुम्हें डराता। और नजीर तो, नजीर और बशीर ये अल्लाह के पैगंबरों का नाम है, डराने वाले। तो अब आप देख लें कि जहन्नुम की हौलनाकी का जिक्र है, और उसके साथ ही जो पैगंबर है, जो पैगंबर है उसकी बेसत जो है उसका असबात है यहाँ पे, कि आज क्यों तुम जहन्नम में आ गए? कोई तुम्हें डराने वाला नहीं था, कोई तुम्हें बताने वाला नहीं था कि तुम गलत काम कर रहे हो, तुम्हारा रवैया गलत है, और तुम्हारे गलत रवैयों के नताइज से कोई तुम्हें डराता? तो क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था? वो क्या जवाब देंगे? कालू बला, वो कहेंगे हाँ क्यों नहीं। याद रखें कि बला जो है इसके अंदर क्या कहा जाता है, हाँ क्यों नहीं। वो कहेंगे कि हाँ हाँ इसके अंदर नाम की बजाय ज्यादा जोर और ताकीद पाई जाती है, हाँ क्यों नहीं। इकरार करेंगे कि हाँ क्यों नहीं। कद जाअना नजीर, तहकीक आया था हमारे पास डराने वाला। और जा माजी के साथ कद आ जाए तो माजी करीब के मानी पैदा हो जाते हैं ना, तो कहेंगे कि हाँ आया था हमारे पास खबरदार करने वाला, हमें डराने वाला तो आया था। फकज्जबना, मगर हमने उसे झुटला दिया। फा उनकी पूरी कहानी को पेश कर रहा है कि बस हमने उसको, उनको झुटला दिया, हमने मान कर ना दिया, मान करना दिया। अहले मक्का भी क्या कर रहे थे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटला रहे थे। और ये मक्की सूरत है, मक्की दौर है, सूरत मुल्क नाजिल हो चुकी है, और अहले मक्का प्यारे रसूल को झुटला रहे हैं। तो झुटलाने वाले फिर क्या कहते हैं? कहते हैं कि जब हमने रसूल को झुटलाया था तो हमने क्या कहा था, वकुलना मा नज़लल्लाहु मिन शई, और हमने तो कहा अल्लाह ने कुछ भी नाजिल नहीं किया है ना, रसूल का इनका इकरार किया और ना ही जो रसूल किताब लाया था ना उसका इकरार किया। और साथ हमने क्या कहा, इन अंतुम इल्ला फी दलालिन कबीर, बल्कि तुम बड़ी गुमराही में पड़े हुए हो। अब आप देखें कि बल्कि हमने ये कहा कि दावत देने वाले और रसूल पर ईमान लाने वाले सारे सख्त गुमराही में हैं। अब मुफस्सरीन ये कहते हैं कि ये जो सवाल है ना कि कुल्लमा उल्किया फीहा फौजुन सअलहुम खजानतुहा अलम यातिकुम नजीर, ये कोई ऐसे नहीं कि बस उनसे पूछा जाएगा कि इनको सजा दी जाए या ना दी जाए, ऐसा नहीं है कि ताकि उनके साथ अदल किया जाए। बल्कि क्या है कि जैसे कभी दुनिया में भी होता है कि माँ बाप बच्चे को मारते जाते हैं और कहते हैं कि तुझे बताया नहीं था, तुझे बताया नहीं था कि पढ़ाई कर, तैयारी कर, तुझे बताया नहीं था कि रात के वक्त ना जाना खेलने के लिए, कितनी दफा तुमने समझाया था कि ऐसे ना किया कर, तुम्हारी ये हरकतें और ये दिन आज अपने किए का मजा चको। दुनिया में भी ऐसे पिटाई होती है ना, कभी उस्ताद भी शागिर्दों को सजा दे देता है, और अब तो वो जमाने गए कि उस्ताद शागिर्दों को सजा दे, कहीं शागिर्द भी उस्ताद को सजा ना दे दे, है ना। क्योंकि यहाँ की दुनिया में आप देखें कि उस्ताद का क्या मकाम है, यहाँ के स्कूलों में देखें कि उस्ताद को तालबिल्म कोई नहीं मानते ना, तो बहरहाल तालबिल्मों ने उस्ताद को क्या मानना, अब तो माँ बाप को भी नहीं मानते। वो कल औरत वो रो रही थी और कह रही थी कि उलाद से डर लगता है, उलाद कहना नहीं मानती, ना मेरा मानती है ना मेरे शोहर का मानती है, और मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, रात रात भर मैं और मेरा शोहर जागते रहते हैं। तो ये है औलाद। अब आप देख लें कि बहरहाल अब जहन्नुम के दरोगा उनसे कह रहे हैं कि क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था। नंबर एक वो इकरार करेंगे, नंबर दो वो कहेंगे कि हमने तो उनको झुटला दिया था, नंबर तीन वो कहेंगे कि हमने ये भी कहा था कि अल्लाह ने कुछ नाजिल भी नहीं किया, और नंबर चार वो अपने इस जुर्म का भी इकरार करेंगे कि हमने तो ये भी कहा था कि तुम तो बड़ी ही गुमराही में पड़े हुए हो। वकालू, और उस वक्त वो جو ہیں وہ کیا کریں گے؟ اس وقت وہ اقرار کریں گے. کس چیز کا اقرار؟ لو کنا نسمع او ناقل ما کنا فی اصحاب السعیر. کہیں گے کاش, کاش, لو کا لفظ کاش, کاش کے لیے آتا ہے. وائے ناکامی حسرت, کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا, ہے نا. اس دن ان کے دل میں احساس ندامت ہوگا, شرمندگی ہوگی. وہ اقرار کریں گے, لو کننا نسمع او ناقل, کاش کہ ہم سنتے یا پھر ہم سمجھتے. تو سما کا تعلق سماعت کا کانوں سے ہے. کاش کے کان بھرے ہوتے, کاش کے سنا ہوتا پیغمبر کی بات کو, قرآن کی تلاوت کو, اللہ کی آیات کو. او ناقل, یا کچھ عقل سے کام ہی لیا ہوتا. ناقل کا کیا مطلب ہے؟ عقل, سوجھ بوجھ. کاش ہم کچھ عقل مند بنے ہوتے. اور دنیا میں عقل مند کس کو کہتے ہیں؟ جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے, جو آخرت کی تیاری کرے تو کہتے ہیں یہ بیوقوف ہے, حلال حرام میں تمیز کرتا ہے, نمازیں پڑھتا ہے, بات بات میں اللہ کو لے آتا ہے, اس کو بیوقوف کہتے ہیں. تو عقل مند کون ہے؟ جو دنیا میں رہ کے آخرت کی تیاری کرے. اس دن وہ حسرت کریں گے, افسوس کریں گے, کاش ہم سنتے یا سمجھتے. ما کننا فی اصحاب السعیر, ما یہاں پہ نافیہ ہے, نہ ہوتے ہم سعیر. سعیر سین عین را, یہ لفظ آگ کے لیے آتا ہے, اور سعیر جہنم کا ایک نام بھی ہے, کہ ہم جو ہے وہ جو جہنم میں جانے والے لوگ ہیں, جو جلنے والے لوگ ہیں, پھر ہم ان جلنے والے لوگوں میں جو ہے وہ شامل نہ ہو جاتے. تو اس دن جو ہے وہ حسرت کریں گے, اس دن وہ روئے دھوئیں گے, اس دن وہ پریشان ہوں گے. اور دنیا میں انسان جب وقت گزر جاتا ہے تو حسرت کیا ہی کرتا ہے, اور جو دودھ ابل جائے پھر وہ کبھی واپس نہیں آتا, ہے نا. گیوا وقت واپس نہیں آتا, اب پچھتائے کیا ہو جب چگ گئی چڑیاں کھیت. اسی طرح جو دودھ تھنوں سے باہر نکال لیا جائے وہ تھنوں میں کبھی واپس نہیں ڈال سکتے, اسی طرح گیوا وقت کبھی واپس نہیں آتا. انسان حسرت ہی کرتا رہتا ہے, کاش کہ میں نے جوانی کو ضائع نہ کیا ہوتا. وہ طالب علم جو ساری زندگی نہیں پڑھتا, ساتھی اس کے پڑھ جاتے ہیں, پھر وہ ڈاکٹر, انجینئر اور سوسائٹی میں ایک اچھے مقام پر آ جاتے ہیں, اور وہ مزدور بن جاتا ہے, کبھی وہ کسی کا سامان ڈھوتا ہے, اور کبھی وہ جو ہے وہ روڑی کوٹتا ہے, کبھی وہ ٹرکوں کو کھینچتا ہے, اور کبھی وہ مینیجر مزدوری کرتا ہے. تو کہتا ہے کہ کاش کہ میرے ماں باپ نے تو مجھ پر بھی پیسے لگائے تھے, میرا بھائی ڈاکٹر بن گیا اور آج میں مزدوری کر رہا ہوں, کاش کہ میں نے اپنے ماں باپ کی بات مانی ہوتی. اس دن اس کی حسرت اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتی. اور یہ میں اور آپ اپنے گھروں میں مثال دیکھتے ہیں, بالکل ایگزیکٹ ایسا ہی ہوگا کہ کچھ لوگ جو آج تیاری کر رہے ہیں, وہ صبح سویرے اٹھتے ہیں, وہ دن بھر فرائض کی ادائیگی کرتے ہیں, اور پھر ڈرتے رہتے اور کامتے رہتے ہیں کہ کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے. تو ان کا یہ ڈرنا اور نیکیاں کرنا ان کو جنت میں لے جائے گا. اور جو نافرمانیاں بھی کرتے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ دیکھا جائے گا جب وقت آئے گا, اور ڈرتے بھی کوئی نہیں ہے, اور کہتے ہیں اچھا دیکھا جائے گا, سوتے اور دوسرے کو تنگ کرتے اپنا وقت گزار دیتے ہیں, تو یہی وہ لوگ ہیں جو ملامت کریں گے اور جو افسوس کریں گے اور کہیں گے کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے. فاعترفوا بذنبہم, اس طرح وہ اپنے قصور کا اعتراف کریں گے. اب آپ دیکھیں کہ ذم واحد ہے, ذنوب اس کی جمع ہے. اب وہ وہاں پہ ذم کا اعتراف کریں گے. ذم کیوں آیا؟ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہاں قصور کا لفظ واحد استعمال ہوا ہے, ذم. اس کے معنی ہے اصل وہ قصور جس کی بنا پر وہ جہنم میں گئے. قصور ایک ہے, ایک قصور, اور وہ کیا؟ اللہ کا انکار, رسول کا انکار, کتاب کا انکار. باقی سارے گناہ اس کی شاخیں ہیں. ایک کفر کیا تھا اور کفر کے نتیجے میں پورے دین اسلام کو جب جھٹلا دیا, پھر منافقت آ گئی, پھر شرک آ گیا, پھر سارا کچھ آ گیا. فاعترفوا بذنبہم, اب وہ اپنے قصور کا خود اعتراف کریں گے. فسحقا لاصحاب السعیر, پس لعنت ہے ان دوزخیوں پر. تو اب یہاں پر جو ہے انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہے, کیونکہ جہنم میں جا چکے ہیں, اور اب جو ہے ان سے انہیں کیا کہا جائے گا؟ فسحقا, پس دفع ہو جائیں, پس لعنت ہے لاصحاب السعیر, دوزخ میں جلنے والوں کے لیے. تو سحق جو ہے جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے, سحق. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سحق جو ہے یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہونا، اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا، اس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال دونوں طرح بات یہی ہے کہ اب پھر ان سے کہہ دیا جائے گا کہ بس دور ہو جائیں آگ میں جلنے والے، ان کا رونا دھونا، ان کا معذرتیں کرنا۔ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ بچہ جب روتا دھوتا ہے نا، معذرتیں کرتا ہے، کہنا بھی نہیں مانتا۔ جیسے وہ ماں جو تھی وہ رو رہی تھی کہ اولاد اتنا تنگ کر رہی ہے اور کہنا نہیں مان رہی اور غلط راستوں پر ہے، اور پھر کہتی ہے، یہ بھی کہہ رہی تھی کہ جو ہے وہ کہنا بھی نہیں مانتی، اور پھر جب ان کو تکلیف ہوتی ہے غلط راستوں پہ چلنے کے بعد تو پھر میں روتی ہوں، پھر میں سینے سے لگاتی ہوں نا، کیونکہ بازو جو ہے اس کو کتنا بچایا جائے، اور اگر بازو نہ مانے، جب ٹوٹ جاتا ہے تو گلے کو ہی آتا ہے نا۔ گوشت کو ہڈیوں سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اولاد اچھی ہو یا بری، جب والدین اولاد کو دیکھتے ہیں تکلیف میں تو ماں باپ کی جو ممتا ہے اور جو ان کی شفقت ہے پھر وہ جوش میں آتی ہے نا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، وہ اللہ جو 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، جہنم میں انسان جل رہے ہوں گے، رو رہے ہوں گے، جہنم چیخے مار رہی ہے، دھاڑے مار رہی ہے، اس دن کوئی نہیں اللہ کو ترس آئے گا۔ فسو کر لے اصحاب السعیر، بس جو ہے وہ کیا ہے کہ لعنت ہے ان دوزخیوں پر۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ سحق کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ اب وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے ہیں، اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ اب ان کے لیے جو ہے وہ سحق ہے، جہنم کی ایک وادی جس میں ان کو دھکیل دیا جائے گا۔ اب یہاں سے آیت نمبر 12 سے لے کر 14 تک جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ انسان تو اللہ سے چھپ نہیں سکتا، اللہ تجھے باز پوس کر کے رہے گا۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ اب وہ لوگ جو بے دیکھے رب سے ڈرتے ہیں، یخشون ربهم، خشیت ہے ان کے اندر، ڈر، خوف، دل دبتے ہیں، جسم جھکتا ہے، اور کیسے رب سے ڈرتے ہیں؟ بالغیب، بے دیکھے۔ غیب کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو کبھی دیکھا بھی نہیں، پھر بھی انہوں نے پیغمبروں کی تصدیق کی، وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہے۔ اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ لوگوں کی نظروں سے غائب خلوتوں میں اللہ سے ڈرتے رہے، جلوت میں نہیں۔ سب کے سامنے تو سبھی اچھے بن جاتے ہیں، لیکن خلوت میں بھی وہ اللہ سے ڈرتے رہے۔ بالغیب لہم مغفرتوں و اجر کبیر، دو ان کی صفات ہیں کہ نمبر ایک یخشون ربہم، نمبر دو بالغیب۔ اب دو ان کے لیے انعامات ہیں، نمبر ایک لہم مغفرتن، کل بات کو سامنے رکھ دیا کہ ان کے لیے تو بس بخشش ہے، مغفرت ہے، جتنی بھی ان سے غلطیاں ہوئیں، جو بھی ان کے گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا، ان کو معاف کر دیا۔ اور اتنا ہی نہیں، وہ اجر کبیر، اور ان کے لیے بڑا اجر ہے، تھوڑا اجر نہیں، ان کے لیے بہت زیادہ اجر ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ کیسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کھلے کو بھی جانتا ہے اور چھپے کو بھی جانتا ہے۔ تو اللہ کو کون سی نیکی مطلوب ہے جو بے دیکھے؟ ڈوبتے وقت تو فرعون نے بھی توبہ کی تھی نا، کیونکہ جب انسان مرنے لگتا ہے، جب اس پر غرغرے کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، دنیا سے اس کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے اور دوسری دنیا سے اس کا تعلق جڑ جاتا ہے، اس کو فرشتے پھر نظر آنے لگتے ہیں، اور اس وقت کی توبہ جو ہے پھر قبول نہیں کی جاتی، ڈوبتے وقت کی۔ تو یہاں پہ بھی یہی ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں بھی دیکھے اپنے رب سے ڈرتے رہے، اور ان کے لیے دو انعامات ہیں، ایک مغفرت اور بڑا اجر۔ اللہ کرے کہ میں اور آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا جا رہا ہے کہ اللہ کیسا ہے، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ، کہ تم بات کو خواہ چپکے سے کرو یا اونچی آواز سے۔ سری اور جہری نمازوں کو یاد رکھیں۔ سری نمازیں کون کون سی ہیں؟ جس میں امام جو ہے وہ قرات کو جو ہے وہ خاموشی سے اپنے منہ میں کرتا ہے، اونچی آواز میں نہیں کرتا۔ تو سری نمازیں ہیں ظہر کی اور عصر کی۔ اور جہری نمازیں کون سی ہیں؟ فجر، مغرب اور عشاء، جس میں امام جو ہے وہ اونچی آواز میں تلاوت کرتا ہے۔ تو اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اے انسان، تو خواہ چپکے سے بات کر، سر राज को भी कहते हैं ना खामोशी से, चुपके से, तू चुपके चुपके बातें कर, कौलाकुम अपनी बातें, अवि झरूबेही, या फिर ऊंची आवाज में, ये दोनों चीजें यकसा हैं। पीछे आसनु अमला की बात हुई थी, यहाँ पे कौल की बात आ गई, कौल की बात। तो हमारी बातें, हमारे अमल और इसके साथ हमारी सोचें, ये सारे हमारे पेपर हैं। हम क्या पेपर देते हैं दुनिया में, तो कहते हैं ना एक मैथ का पेपर दे रहे हैं, एक जो है वो दे रहे हैं उसका साइकोलॉजी का दे रहे हैं, या केमिस्ट्री का या बायोलॉजी का, डिफरेंट हमने सब्जेक्ट और उनके नाम रखे हैं। लेकिन इंसान जितने भी पेपर देता है उसको बस आप तीन हिस्सों में तकसीम कर सकती हैं, एक हमारी थिंकिंग, हमारी सोचें, हमारे इरादे, हमारी नीयतें, इन्नमल अमालु बिन्नियात। दूसरी चीज हमारी टॉक है, कॉल, जो भी हम बातें करते हैं, अच्छी कर रहे हैं वो भी लिखी जाती है, बुरी करते हैं वो भी। और तीसरे हमारे अमल हैं, सुए अमाल हैं या आसन अमाला, ये सारे लिखे जाते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं वासिरु कौलकुम अविजहरु भी, तुम खा चुपके से बात करो या ऊंची आवाज से, ये अल्लाह के लिए यकसा है। कैसे? इन्नहु अलीमुम बिजाति सुदूर, बेशक वो जानता है, वही तो जानता है, अलीम खूब जानता है, फईल के वजन पर, क्या बिजाति सुदूर, सदर की जमा है सुदूर, और सुदूर जो है ये किसे कहते हैं, सीने के लिए इस्तेमाल होता है। अब आप देखें कि एक तो ये है कि जबान से जो बात निकले वो तो लोगों की समझ में आए, और दूसरी बात क्या है कि जबान से तो बात नहीं निकली, दिल के अंदर है, सर के अंदर एक इरादा है, एक नीयत है, अल्लाह वो भी जानता है। सूरत तारिक में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, सूरत तारिक में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, क्या फरमाया, इन इन कुल्लु नफ्स लम्मा अलैहा हाफिज, आयत नंबर 4। और इसी तरह जो है वो अल्लाह ताला ने आयत नंबर 9 में फरमाया, यौम तुबल सराइर, के जिस रोज पोशीदा असरार की जांच पड़ताल होगी, तुबलर सरायर है ना, तो वहां पे भी ये बात कही कि जितने भी इंसान के पोशीदा असरार हैं, जो एक राज बन गए, जिनको कोई नहीं जानता, तो अल्लाह ताला उनको भी पूछेगा। इसी तरह हमारे सीनों के अंदर क्या है, हम जारी तौर पर एक अमल करते हैं, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह तुम्हारी छुपी हुई बातों को और ऊंची बातों को इसलिए जानता है, क्या वही ना जानेगा, इन्नहु अलीमुम बिजाति सुदूर, एक सदर नहीं सुदूर, सारी दुनिया के सीनों के अंदर जो राज हैं और जो बातें हैं, जो दिलों का हाल है, वो अल्लाह जानता है। तो ऐ इंसान, तू इस बात को अपने जहन में ताजा रख के वो खुले और छुपे सारी चीजों को जानता है, तो इसलिए इंसान को बेखौफ नहीं होना चाहिए, अल्लाह की गरिब से डरना चाहिए। अला यालमु मन खलक, ये बड़ी खूबसूरत दलील है, क्या वही ना जानेगा जिसने पैदा किया, जैसे माँ नहीं होती, बच्चा रो रहा होता है, बोलता कुछ नहीं है, माँ कहती है असल में बच्चे को भूख लगी है, असल में बच्चे की ये नींद का वक्त है, और कहते हैं कि माँ को बुलाओ, माँ को पता होगा इसको मसला क्या है। तो गुंगे की बातें गुंगे की माँ जाने, गुंगा हो या इशारे करने वाला हो या जबान से बातें करने वाला हो, कोई भी ना जाने, माँ जानती है ना, माँ हर वक्त साथ रहती है। तो जो 70 माओं से बढ़कर मोहब्बत करता है और जो खालिक है जिसने पैदा किया, क्या वही ना जानेगा, अल्लाह ताला कहते हैं अला यालमु मन खलक, क्या वही ना जानेगा जिसने पैदा किया। इसके मानी ये हैं कि जिसने इंसान को पैदा किया है, वो जो खालिक है, वही कादिर है, वही अजीज है, वही गफूर है, और वही मालिक है, और वही अलीम है, सबसे ज्यादा वही जानता है, और क्या वही ना जानेगा। फिर आगे मजीद तारुफ, वहुवल लतीफुल खबीर, हालांकि वो बारीक भी और बाखबर है। लतीफ जो है गैर महसूस तरीके से काम करने वाला, पोशीदा हकायक को जानने वाला। लतीफ के अंदर दो बातें पाई जाती हैं, नंबर एक जैसे बारीक बीनी, राज है, छोटी छोटी बातों से भी आगाही, और नंबर दो क्या बात इसके अंदर फिर पाई जाती है, नरमी, नरमी भी, लतीफ बारीक भी। वो जो है वो कल परसों एक औरत बता रही थी कि जो है वो एक जो है वो कह रही मेरा जेठ है और मेरी सास फौत हो गई, तो उसकी जो है वो वालदा और उसकी सास दोनों सगी बहनें थी। तो अब कह रही है कि सास फौत हो गई और जेठ घर आया और बुखार था तो खाना नहीं खा रहा था, और ऐसे खा रहा था लेकिन जैसे खाया नहीं जा रहा था उसे। तो कहती है कि मेरी वालदा ने उसको देख, मेरी वालदा यानी जो उसकी खाला थी उसको देखकर कहा कि क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो रोने लगे ना, कहने लगे कि मेरी माँ नहीं है और खाला को पता चला कि मुझे बुखार है, क्योंकि वो कहती है बताते नहीं किसी को, इजहार नहीं करते मुझे क्या तकलीफ है ना। तो जो वालदैन भी होते हैं ना, बच्चे इजहार नहीं करते लेकिन वालदैन को पता होता है कि बच्चा क्या चाहता है। तो अब अल्लाह ताला यहाँ पर अपना तारुफ करवा रहे हैं कि वहु अल लतीफुल खबीर, कि वो इंसान की छुपी हुई बातें, ऐसी बातें जो किसी को भी नहीं पता, अल्लाह सारी बातों को जानता है, बड़ी नहीं छोटी छोटी भी। तो लतीफ के साथ खबीर आ गया, तो लतीफ छोटी बातें, खबीर बड़ी बातें, लतीफ जो है वो छोटे छोटे जो राज हैं वो भी सारे अल्लाह को जो है वो पता है। तो यहाँ पे गोया के बताया जा रहा है कि एक तरफ जो मुनकिर है ना उनको डराया जा रहा है, जो अल्लाह के नाफरमान है, जो छुपकर गुनाह करते हैं, दूसरी तरफ जो अल्लाह के फरमाबरदार है ना उनको ये बात बताई जा रही है कि अगर तुम्हारी वो नेकियां जो तुमने छुप छुप कर की, जो तुमने खलवतों में की, दुनिया भी नहीं जानती, मैं तो जानता हूं ना, मैं उसका अजर दूंगा, मैं उसका इनाम दूंगा, तो तुम क्यों घबराते हो। तो आयत नंबर 12 से लेकर 14 तक ये हकीकत बताई गई है कि इंसान को अनदेखे अल्लाह की बाज पुर से डर कर बुराई से बचना चाहिए और नेकियां करनी चाहिए, क्योंकि नेकियों का अजर जो है वो आखिरत में मिलने वाला है। ये है अल्लाह की जात का तारुफ और बड़ा खूबसूरत है। और जो शख्स रात को रोज अगर सूरत मुल्क पढ़कर सोएगा और ये एहसास उसके दिल में जागजी होगा, तो सोचें कि उसके अमाल फिर कैसे होंगे ना, कैसा उसका किरदार।